नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। इसराइल ने संघर्ष के लिए फिलिस्तीन के इस्लामिक आतंकी समूह हमास को जिम्मेदार ठहराया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने का संकल्प लिया। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु। अफगानिस्तान में आए भूकंप से मृतकों की संख्या 2400 से अधिक हुई। सिक्किम बाढ़ में लापता 105 लोगों की तलाश जारी, मृतकों की संख्या 33 हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से इटली और फ्रांस की यात्रा पर। और एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। इसराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के कारण मृतकों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है। उनमें से लगभग 700 लोग इसराइल में मारे गए जबकि 400 गाजा में मारे गए हैं। इस संघर्ष में हजारों लोगों के घायल होने की आशंका है। कुछ क्षेत्रों में हमास के हमले के बाद मलबा हटाया जाना शेष है और कहीं कहीं लड़ाई चल रही है। इसके कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इसराइली सेना ने दावा किया है कि उसने अभी तक 800 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। इनमें पूर्वोत्तर के बेथ हनन शहर पर हवाई हमले भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कम से कम 70,000 फिलिस्तीनियों ने स्कूलों में शरण ली हुई है। इसराइल ने इस संघर्ष के लिए फिलिस्तीन के इस्लामिक समूह हमास को जिम्मेदार ठहराते हुए आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने का संकल्प लिया है। इस बीच विश्वभर के नेताओं ने आतंकी गुट हमास के हमले की निंदा की है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि इसराइल के किसी भी दुश्मन को इस स्थिति का लाभ उठाने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की संवेदनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने कहा वे इस आतंकी घटना से स्तब्ध हैं और संकट की इस घड़ी में इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं।
We stand in solidarity with the people of Israel. Instructions have been already given. The advisory has been issued by the Indian embassy that Indians should be cautious. Indians should stay close to the places of their regular stay of thing. And for any requirement, they should inform and be in touch with the Indian embassy.
पेंटागन ने कहा है कि अमरीका इसराइल को गोला बारूद और उपकरण देगा और फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास के हमलों के जवाब में मध्य पूर्व में अमरीकी सेना को बढ़ावा देगा। अमरीकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान में कहा कि अमरीकी सरकार इसराइली रक्षा बलों को युद्ध सामग्री सहित अतिरिक्त उपकरण और संसाधन प्रदान करेगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। इससे पहले श्री नेतन्याहू ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित विश्व के कई नेताओं से बातचीत की और हमास के हमले के विरूद्व समर्थन मांगा। इसराइल हमास संघर्ष के कारण एयर इंडिया ने तल अवीव आने जाने वाली सभी उड़ानें शनिवार तक रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने बताया है कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा को देखते हुए ये उड़ानें निलंबित की गई हैं। एयरलाइन ने यह भी कहा है कि वो यात्रियों को हर संभव सहायता देगी जिन्होंने इस दौरान किसी भी उड़ान से बुकिंग की है। अफगानिस्तान में भूकंप के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 2400 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी और बचाव के प्रयास जारी हैं। माना जा रहा है कि भूकंप से ध्वस्त भवनों के मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। एक रिपोर्ट।
अफगानिस्तान में शनिवार को आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। ये दो दशकों में आए सबसे भीषण भूकंपों में से एक था। इसका केंद्र पश्चिमी शहर हेरात से 40 किलोमीटर दूर था। भूकंप के शक्तिशाली झटके कम से कम 3 बार महसूस किए गए। इस दौरान बहुत से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और बड़ी संख्या में लोग मलबे में दब गए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भूकंप से कम से कम 465 मकान ध्वस्त हुए हैं। पिछले वर्ष जून में अफगानिस्तान के पाक्तिका प्रांत में 5.9 तीव्रता वाला भूकंप आया था। इसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे। अफगानिस्तान को अक्सर भूकंप का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में हमेशा भूकंप आते रहते हैं क्योंकि ये यूरेशियाई और भारतीय टेक्टोनिक परतों के संधि स्थल के नजदीक स्थित है। समाचार कक्ष से मनोज।
सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इनमें सेना के 9 जवान भी शामिल हैं। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 105 लोग अभी भी लापता हैं। 2563 लोगों को बचाया जा चुका है और 6847 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। आपदा के कारण 1320 मकान भयानक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। सिक्किम में सेना की त्रिशक्ति कोर के जवान लापता सैनिकों की तलाश कर रहे हैं। 4 अक्टूबर को हुई दुर्घटना के बाद लापता 23 में से एक सैनिक को जीवित सुरक्षित बचा लिया गया था। बरामद किए गए 8 शवों की पहचान हो चुकी है। शेष जवानों की तलाश जारी है। त्रिशक्ति कोर उत्तरी सिक्किम के लाचेन, लाचुंग, थांगू और चुंगथांग इलाकों में फंसे हुए 1700 पर्यटकों को भी सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्हें खाने पीने के सामान, चिकित्सा सहायता और संचार सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कल सिक्किम के मंगन जिले में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया।
लोगों का घर संपत्ति का नुकसान होने के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी का बड़ा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है और लगातार हमारी कोशिश यह है कि जो लोग ऐसी जगहों पर फंसे हैं जहां उनका जीवन संकट है उनको पहले हम लोग निकाल लें और कैसे लोगों की जरूरतें पूरी हो सके इसके लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग कर रही है।
मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने फिदांग पुल डिक्चू के निकट बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और लोगों से मिलकर उन्हें हर तरह की सहायता का भरोसा दिया।
जो सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हम जो भी करना है हम लोग करेंगे। जो भी बिजली सप्लाई का काम था वो अभी कहीं शहरों में हम लोग ने कर चुका है और जहां जहां भी रोड टूटा है वहां पर एनडीआरएफ के साथ मिलकर बीआरओ के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि हम लोग जहां पर डिजास्टर हुआ है सबसे ज्यादा वहां पर पहुंच पाए।
बाढ़ के कारण जोंगू इलाका पूरी तरह से कट गया है क्योंकि फिदांग और संगकलांग में जोंगू को जोड़ने वाले दोनों पुल पूरी तरह से बह गए हैं। पेंगोंग को जोड़कर चुंगथांग में बांस का एक अस्थायी पुल भी बनाया गया है। उत्तराखंड में कल देर रात नैनीताल जिले के मंगोली घटकड़ के पास 31 यात्रियों को ले जा रही एक बस के खाई में गिर जाने से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। बस में हरियाणा के हिसार जिले के स्कूली शिक्षक थे जो नैनीताल की यात्रा से लौट रहे थे। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एक बस मंगोली के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये हरियाणा से शिक्षकों का एक ग्रुप था जो घूमने के लिए आए हुए थे। जो सर्च एंड रेस्क्यू टीम है वो मूव कराई गई। कुछ लोगों को गंभीर चोट भी है, कुछ लोग नॉर्मल जिनको थोड़ी बहुत चोट लगी है, तो सभी को प्राथमिक उपचार भी दे दिया गया है। यहाँ अभी तक 7 कैजुअलिटीज की सूचना मिली है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा है।
लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद करगिल चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने 5वें आम चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद हुए चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। कांग्रेस ने 10 सीटें हासिल की हैं। भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीयों ने 2-2 सीटें जीती हैं। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन ने 70% लक्ष्य प्राप्त कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गुणात्मक जल की आपूर्ति और उसके प्रबंधन में भी प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 13,16,000 ग्रामीण परिवारों को नल से जल की आपूर्ति हो रही है। इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल उपलब्ध कराना है। केंद्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रमों के मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय ने कल दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पैम्पोर में मसाला पार्क का दौरा किया। डॉ पांडेय ने मसाला पार्क में प्रसंस्करण इकाइयों तथा बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि विभाग ने वहां केसर के उत्पादन के लिए चलाई जा रही गतिविधियों का विस्तार से ब्यौरा दिया। साथ ही केसर की गुणवत्ता बनाए रखने और भौगोलिक संकेत टैग सुरक्षित रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी। तेलंगाना सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नकद रहित स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कल कर्मचारी स्वास्थ्य कल्याण न्यास ईएससीटी का गठन किया। कर्मचारी और पेंशनभोगी हर महीने ईएससीटी में एक निर्धारित राशि का अंशदान करेंगे। ये राशि हर महीने उनके वेतन अथवा पारिश्रमिक या पेंशन से कटेगी। राज्य सरकार भी हर महीने इस न्यास में समान धनराशि का योगदान देगी। दक्षिणी मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 4 और रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय पर्यटन जी किशन रेड्डी आज सिकंदराबाद स्टेशन से काजीपेट के हडपसर के लिए ट्रेन से हरी झंडी दिखाएंगे। वे वर्चुअली माध्यम से कुरनूल जयपुर, बोधन करीमनगर, रायचूर नांदेड़ के लिए भी ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे। कल से जयपुर से काचीगुड़ा तक चलने वाली जयपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस को आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर तक बढ़ाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री राजनाथ सिंह का रोम में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रिसेटो से मिलने का कार्यक्रम है। इस वर्ष मार्च में इटली के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। यात्रा के दूसरे चरण में श्री सिंह पेरिस में अपने समकक्ष फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नो के साथ 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे। भारत और फ्रांस ने हाल ही में रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर तंजानिया की राष्ट्रपति भारत की 4 दिन की राजकीय यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। राष्ट्रपति हसन का आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में पारंपरिक स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वे राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करने जाएंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डेंगू बुखार कारण लक्षण और निवारक उपाय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मेडिसिन विभाग के डॉ पीयूष रंजन भाग लेंगे। यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने कल रात ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 41 ओवर और 2 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 201 रन बना लिए। विश्व कप में आज हैदराबाद में न्यूजीलैंड का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। यह मैच दोपहर बाद 2 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
धन्यवाद निखिल। आज प्रकाशित सभी अखबारों ने इसराइल हमास संघर्ष से जुड़ी खबरों को प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, इसराइल में सभी भारतीय सुरक्षित, दूतावास के अधिकारी 24 घंटे उपलब्ध। अमर उजाला का शीर्षक है, भारतीयों को वापस लाने की कोशिशें तेज, दूतावास ने परामर्श जारी किए। इसी खबर पर हरिभूमि के शब्द हैं, भारतीयों की जल्द होगी वापसी, पीएम खुद कर रहे हैं निगरानी। पंजाब केसरी की खबर है, वायुसेना को मिला नया ध्वज, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कल प्रयागराज में वायुसेना दिवस परेड के दौरान नए ध्वज का अनावरण किया। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, आज के जटिल और तेजी से बदलते सामरिक माहौल को देखते हुए वायुसेना की क्षमताएं बढ़ाना आवश्यक। राजस्थान पत्रिका ने अपने विशेष आलेख में दिया है, भारतीयों को भरोसा, 1 साल में बढ़ेगी आमदनी और रोजगार। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था पर कारोबारियों का विश्वास बढ़ा। वीर अर्जुन के कारोबार पन्नों की खबर है, भारत में चालू वित्त वर्ष के दौरान अगस्त तक मोबाइल फोन निर्यात दोगुना बढ़ा, 45,700 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन निर्यात हुए। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अगले वर्ष से नई व्यवस्था के तहत परीक्षाएं संभव। पत्र ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हवाले से लिखा है, वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देना जरूरी नहीं। नवभारत टाइम्स की यह खबर ध्यान आकृष्ट करती है, फिर से आया पॉल्यूशन का मौसम, अपनी सेहत का रखें खास ध्यान। राष्ट्रीय सहारा ने त्योहारों की तैयारी शीर्षक से लिखा है, जितनी जरूरत उतनी ट्रेन चलाएगा रेलवे। दशहरा, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के लिए विशेष रेलगाड़ियां।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, इसराइल ने संघर्ष के लिए फिलिस्तीन के इस्लामिक आतंकी समूह हमास को जिम्मेदार ठहराया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने का संकल्प लिया। संघर्ष में लगभग 1,000 से अधिक लोगों की मृत्यु। अफगानिस्तान में आए भूकंप से मृतकों की संख्या 2,400 से अधिक हुई। सिक्किम बाढ़ में लापता 105 लोगों की तलाश जारी, मृतकों की संख्या 33 हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से इटली और फ्रांस की यात्रा पर। और एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।